Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 4, Text Number 17. कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, कर्मणो यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः शब्दों का अर्थ कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् कर्मणो अर्थात कर्म का ही अर्थात निश्चय ही अपि यानी भी बोद्धव्यम् यानी समझना चाहिए बोद्धव्यम् च विकर्मणः बोद्धव्यम् अर्थात समझना चाहिए च मना भी विकर्मण अर्थात वर्जित कर्म को अकर्मणश्च बोद्धव्यम् अकर्मण अर्थात अकर्म का च अर्थात भी बोद्धव्यम् अर्थात समझना चाहिए आगे कहते हैं गहना कर्मणो गति गहना अर्थात अत्यंत ही कठिन है बहुत दुर्गम है क्या कर्मणो गति अर्थात कर्म की प्रवेश या कर्म की गति तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो अनुवाद कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है विकर्म क्या है और अकर्म क्या है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत ही गहन विषय है कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा दूसरे शब्दों में जिसने यह बलिबांधी समझ लिया है कि वह जानता है कि जीव आत्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावना में इतने कार्य करना है संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का यही लक्ष्य है इस भावना अमृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है यह साक्षात भगवान से समझने के समान है अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाता है कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी सर्वोपाद की जय हो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम्, सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गारण्ये श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी, प्रणमामि हरि प्रिये वंशकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 4 वर्स नंबर 17। आज भगवान तीन प्रकार के कर्मों के विषय में बोल रहे हैं कि आपको समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में संसार में आवागमन के चक्कर में यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने का एक ही कारण है कि जीव ये नहीं समझ पाता है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम्। आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कर्म क्या है, यानी कि हर कोई जीव कार्य करता है, तो जो भी कार्य आप करते हो चाहे वो कितना ही सुंदर सुव्यवस्थित सकाम कर्म क्यों न हो, यानी वेदों में बयान किया हुआ, वेदों में बताया हुआ भी यदि वो कर्म है, सकाम कर्म है, तो भी चाहे वो कितना ही सुंदर है वो आपके बंधन का कारण बनेगा। अब वेदों में जो कर्म कांड का जो भी बताया गया है उसके विषय में भगवान कह रहे हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम्। वेदों में बताए गए कर्मों को करके तुम ये ना समझ लेना कि तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे, वो भी आपको कर्म बंधन में डालेंगे। और आगे भगवान कहते हैं बोद्धव्यम च विकर्मण। विकर्मण का क्या मतलब होता है, जो वैदिक साहित्य यानी जो शास्त्र है उनके विरुद्ध जो कार्य होता है उसको विकर्म कहते हैं। अब वेदों में बताए गए कार्यों को करने से ही जब हम बंधन में फंसेंगे तो फिर जो वेदों में कहा गया कि आपको नहीं करना है यानी विकर्म जो वेदों में नहीं बताया गया उसके विरुद्ध अगर आप कर रहे हो तो वो कैसे आपको मुक्ति दिला सकता है। तो इसलिए हमें कर्म क्या है विकर्म क्या है और आगे भगवान कहते हैं अकर्मणस्य बोद्धव्यम। अकर्मण का क्या मतलब होता है भक्तिमय कर्म यानी कि जो कार्य आप कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ तो वही एकमात्र कार्य ऐसा है जो कि आपको कर्म के बंधन से छुड़ा सकता है। और भगवान कहते हैं कि आपको ये सब अच्छी तरीके से समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि गहना कर्मणो गति, क्योंकि जो कर्म की बारीकियां हैं कर्म की जो गति है उसको समझना अत्यंत ही कठिन है। और पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि कोई बहुत ज्यादा यदि बुद्धिमान भी हो जाता है कवयोप्यत्र मोहिता किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। अब क्या करना है क्या नहीं करना है बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस बारे में मोहित हो जाते हैं उनको भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो फिर भगवान कहते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि जो मैं बताऊंगा वही प्रमाणिक है क्योंकि मैंने पहले भी लोगों को बताया और उन्होंने मेरे आदेश अनुसार कार्य किया। भगवान कहते हैं 4.15 में भगवान ने कहा था एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया यानी भगवान दिव्य है और हमारी स्थिति क्या है हम भगवान के दास हैं। तो ये सोचकर यदि किसी ने कार्य किया तो फिर उन्हें वापस से जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ा। इसलिए भगवान कहते हैं कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि उनके पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए कार्य करो और पूर्वै पूर्वतरं कृतम् और अपने कर्तव्य का पालन उसी तरह से करो जिस तरह से उन्होंने किया यानी कि अब भगवान ये बता रहे हैं कि हमें कर्तव्य को नहीं छोड़ना है। अर्जुन सोच रहा था कि मैं कर्तव्य को छोड़ के युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि युद्ध करने से तो अपराध लगेगा और यदि मैं अपराध लगेगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान बोले नहीं ऐसा नहीं है आपके जो कर्म है जो नियत कर्म है वो आपको करने हैं लेकिन किस तरह से करने हैं कि वो बंधन का कारण भी ना बने वो आगे भगवान कहते हैं 16 में कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि मैं तुम्हें बताऊंगा और जब तुम इस तरह से कार्य करोगे यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात् कि इस तरह से तुम्हारे जितने भी अकल्याण है अशुभ है उन वो सब ठीक हो जाएंगे क्योंकि तुम मेरे कहने के अनुसार कार्य करोगे। तो मेरे कहने के अनुसार यानी कि जैसे जैसे भगवान ने कहा तो जितने भी महाजन हैं जैसे 12 महाजन कहे जाते हैं तो ऐसे शास्त्र कहता है महाजनों ये न गता सुपंथा जो जो महाजन ने कहा है उसी के अनुसार यदि हम कार्य करते हैं तो फिर कभी भी बंधन का कारण नहीं बनता। और आज भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण आपको कर्म को भी समझना चाहिए। कर्म का क्या मतलब है कि जो वैदिक नियमों के अनुसार हमें कार्य करने को मिलता है और विकर्म क्या है जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके विपरीत यानी जो शास्त्रों में मना किया गया है वो कर्म। और अकर्म का क्या मतलब होता है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई कार्य करते। तो भगवान कहते इन सबको आपको अच्छी तरह से समझना है क्योंकि यदि थोड़ी सी भी चूक रह गई तो फिर आप कर्म बंधन में फंस जाओगे। और ये यहाँ पर भगवान किस चीज की स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान क्या कहते इसी का यही बात भगवान श्री कृष्ण जो अभी बता रहे हैं वही ईश्वर उपनिषद के दूसरे मंत्र में बताई जाती है। वहां पर क्या लिखा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽसि नकर्मण लिप्यते नरा न कर्म लिप्यते नरा, यानी कि कोई भले कितनी ही बड़ी उसकी आयु क्यों ना हो, अगर वो इसी तरीके के से कार्य करता है, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तो वो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। और इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं, यानी कि अगर आप जरा सा भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हो, इच्छा भी करते हो, तो वो आपको बांधेगी। लेकिन यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो अगर उसमें हमारा हमने केंद्र बिंदु कृष्ण को रखा होता है, तो कहा जाता है एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति, इस तरह से यदि आप करोगे तो कभी भी बंधोगे नहीं, न कर्म लिप्यते नरा, और कभी भी कर्म के बंधन में आपको नहीं फंसना पड़ेगा। अब जब तक जीव संसार में है उसे कार्य तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण। अभी देखो अकर्म यानी कार्यहीन, अकर्म का मतलब दो होता है, एक तो कार्यहीनता, तो भगवान ने कहा कार्य के करे भगे तो आप अपनी शरीर यात्रा को भी सफल नहीं कर पाओगे, यानी ये शरीर को भी आप उसका भी निर्वाह नहीं कर पाओगे। लेकिन अब जाहिर सी बात है जीव इस संसार में आया है तो उसे जरूर कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, तो उसको भगवान कहते हैं घना कर्म कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत कठिन है, तो फिर आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि वो कौन सा कर्म है जिसके करने से आप कर्म बंधन में नहीं फंसते हो। क्योंकि अगर आप वेदों के अनुसार सबसे अच्छा कार्य भी करोगे तो भी या तो आपको स्वर्ग मिलेगा या उससे भी ऊपर जाएंगे ब्रह्मलोक मिलेगा, लेकिन वह कार्य करने के बाद अगर जो भी सकाम कार्य है, कर्म कर्म का मतलब होता है जो सकाम कार्य होते जो किसी इच्छा से किए जाते हैं, तो वो अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली भले वो कितना ही अच्छा हो, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो, लेकिन पुनः पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्कर में तो फंस आएगा। और अगर अपराध कर रहे हैं तो डेफिनेटली नरक में जाकर फिर से जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे। तो फिर करना क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति तो वह कर्म को ढूंढेगा जो कार्य करने से वो कर्म के बंधन से आजाद हो जाएगा। इस संसार में जो मामूली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छी जीवन, अच्छा जीवन होना चाहिए हमारा, शोहरत मिलनी चाहिए और तरक्की होनी चाहिए, इसलिए वो ऐसे कार्य करते हैं जिसके बाद उसको कर्म बंधन में फंसना पड़ता है। और श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 14 में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, भगवान कहते हैं नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि यदि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो तो भले कितना ही छोटा हो, छोटा सा भी कार्य होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो छोटा सा भी स्वल्प वायु स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, धर्म से मतलब जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए या धर्म कृष्ण भावनामृत में रहकर जो कार्य किया जाता है, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय का मतलब होता है उससे कभी भी आपका लॉस नहीं होता है, कभी भी आप जन्म मरण के बंधन में नहीं फंसते हो, प्रत्यवायो न विद्यते। और थोड़ा सा भी कार्य क्या करेगा, त्रायते महतो भयान, बड़े बड़े जो बड़ा से बड़ा जो संकट है यानी जन्म मृत्यु का चक्कर, उससे आपको बचा लेगा। और ये भक्तिमय कार्य जिसे अकर्म कहा जाता है वो केवल इस मनुष्य जीवन में ही किया जाता है, कि हम वो कार्य करते हैं कि जिससे भगवान को प्रसन्न किया जाए। जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करते हो आप, हृदय में ये इच्छा हो कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो ये मनुष्य जीवन में ही मौका आपको मुहैया किया जाता है, सिर्फ मनुष्य जीवन में ही आपको प्राप्त होता है। और अगर कोई इतना खुशकिस्मत है जैसे ये चांस मिला है और वो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत बहुत ज्यादा लकी है, बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है, बहुत ज्यादा भाग्यवान है, लेकिन उससे करोड़ों गुना ज्यादा बदनसीब वो व्यक्ति है, यानी अभागा वो व्यक्ति है जो इतने सुंदर सु अवसर का बिल्कुल भी लाभ नहीं उठाता और भगवान की सेवा नहीं करता है मनुष्य जन्म पाकर भी। तो इसलिए शास्त्र हमें बहुत ही सावधान कर रहे हैं कि देखो ये चांस वापस तुम्हें पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर आपको बहुत लंबी लंबा जीवन मिलता है, वो मतलब अगर हम लोग हमेशा चाहते हैं ना कि हमारी जल्दी मृत्यु न हो, लंबा जीवन, लेकिन दरख्त सैकड़ों और हजारों साल तक जीते हैं, लेकिन दरख्तों की तरह अगर हमें भी बड़ा जीवन मिल जाए तो फिर क्या फायदा उस जीवन का। अगर हम सुअरों और कुत्तों की तरह ही केवल इंद्रिय तृप्ति और संतान उत्पत्ति करते रहते हैं या ऊंट की तरह खाने में ही आनंद ले रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि वो आनंद मुझे मेरे ही खून से प्राप्त हो रहा है, यानी कि अगर संसार में कोई सुख किसी को मिल ही रहा है तो भी वो ये उसको नजर नहीं आ रहा कि इतना दुख प्राप्त हो रहा है, इतने दुखों को सहना पड़ रहा है उस थोड़े से दुख को स्वीकार करने के लिए। तो कहीं ऐसा कार्य करूं कि जहां पर मुझे दुखों को ना फेस करना पड़े, केवल आनंद ही आनंद हो। लेकिन आगे चल के अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात को और हम योग में स्थित होकर यानी भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़कर कार्य करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है कि हम वह कार्य करने में सिद्धि को प्राप्त नहीं करते, सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो भगवान से पूछते हैं अर्जुन 6.37 में, अप्राप्य योग संसिद्धिम किम गतिम कृष्ण गच्छति, कि अगर उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है योग में, तो फिर क्योंकि योग में सिद्धि प्राप्त हुई नहीं, अब उस बेचारे ने पहले तो क्या किया, अयति श्रद्धयोपे तो योग चलति मानस, शुरू शुरू में तो बहुत श्रद्धा के साथ कार्य किया, आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण किया, लेकिन बाद में क्योंकि भौतिक अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि उसको नहीं बर्दाश्त कर सका वो, और भौतिक अट्रैक्शन के कारण वो विचलित हो जाता है और योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अब उसने ट्राई तो किया ना फिर भी, तो फिर क्या भगवान को कहते हैं अर्जुन, कामगतिम कृष्ण गच्छति, तो मुझे बताओ उसका क्या आशय होगा, उसकी क्या गति होगी जिसने थोड़ा टाइम तो योग के लिए कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ के उसके लिए कार्य किया, लेकिन फिर बाद में वो भौतिक इच्छाओं के कारण वो कार्य नहीं कर पाया या सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका। तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं 6.40 में, भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत्कस्य दुर्गतिं तात गच्छति। अत्यंत ही सुंदर आश्वासन है भगवान के द्वारा, और भगवान कहते हैं नैवेह नामुत्र, नैवेह यानी इस संसार में भी कभी, और नामुत्र यानी अगले जन्म में, जो भगवान कहते हैं नहीं कल्याणकृत कश्चित, जो अच्छा करता है यानी जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तो फिर उस इस संसार में भी और दूसरे संसार में भी नामुत्र विनाशयस्तस्य विद्य, कि उसका कभी भी विनाश नहीं होता है ना इस संसार में और ना ही दूसरे संसार में। क्यों? क्योंकि नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, क्योंकि जो अच्छा करता है, जो भलाई करता है, उस पर कभी भी बुराई से वो कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता है। यानी कि अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सुंदर कार्य करते हैं और इंद्र तृप्ति की इच्छा को यदि थोड़े से समय के लिए भी ऐसा कार्य करते हैं, तो भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ये थोड़ा सा भी यदि करते हैं तो बड़े से बड़े खौफनाक भय से बच जाते हैं। और इसी तरह अभी बताया कि यदि सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है और थोड़ी सी भक्ति करने के बाद भी आप डाइवर्ट हो जाते हो, तो भी कभी भी दुर्गति नहीं होती है ऐसे व्यक्ति की, वो दोबारा जन्म लेता है और भगवान उसे ऐसा चांस प्रोवाइड करता है कि वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ाता है। तो ये अकर्म है, यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और जब हम इसको करते हैं तो फिर कभी भी हमारा लॉस नहीं होता, जरा सी भी हानि कभी नहीं होती है। तो ये कितनी सरल बात है कि हम समस्त कार्यों में कृष्ण को केंद्रित करके और अपना कार्य करें। लेकिन इसी चीज को भगवान है ना अब बहुत ही सीक्रेट स्टाइल से बता रहे हैं, यानी स्पष्ट नहीं बता रहे। ये कौन सा स्टाइल है? इसको उपनिषद का स्टाइल कहते हैं। उस उपनिषद ज्ञानी लोग के लिए होता है, उसमें ना छोटी छोटी बातें भी बहुत सीक्रेट टाइप से लिखी होती है, क्योंकि सरल बात अभी उपनिषद क्योंकि ज्ञानियों के लिए है, तो अगर सरल बात लिखी होती है ना तो उनको मजा नहीं आता। जैसे अगर बहुत बड़ा राक्षस होता है जैसे सहस्रबाहु, तो उसके बहुत सारे बाजू होते हैं, तो उसका दिल करता है कि कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं कुछ करना है, लड़ाई करनी है, मारना है, ये कर। तो क्योंकि ज्ञानियों के पास बहुत बुद्धि होती है, तो वो भी क्या सोचते हैं कि हमें भी है ना बुद्धि को यूज करना है। तो इस तरह से भगवान उनको अवसर प्रदान करते हैं, उन्हीं चीजों को इस तरह से लिखते हैं गुप्त स्टाइल में। वास्तव में क्या है, कर्म से ज्ञान, अभी हम भगवान कर्मयोग बता रहे हैं, कर्मयोग से भगवान ज्ञान योग और ज्ञान योग से भक्ति योग। यानी वास्तव में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान की भक्ति करना। तो फिर ये भगवान बताएंगे, लेकिन अभी भगवान जो है वो उपनिषद वाला स्टाइल अभी बताएंगे कि आपको कर्म और अकर्म के अंदर किस तरह से भेद समझना है और किस तरह से करना है। तो भगवान अभी 18वें श्लोक में बताएंगे, कर्मण्य अकर्म, कर्मण्य कर्म पश्य यह पश्ये, अकर्मण च कर्मण, के जो कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को देखता है। तो भगवान कहते हैं, स बुद्धिमान मनुष्येषु, सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही है, स युक्त कृत कर्मकृत, क्योंकि वो सदैव सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के लिए कार्य करता है, तो कभी भी बंधन में नहीं फंसता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।